अरुणिमा राजा साहब की माँ के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने दो तीन बार दरवाजा पीटा। अचानक से दरवाजा खुल जाता है और अरुणिमा हैरान हो जाती है। वो धीरे से अंदर आती है तो देखती है राजा साहब सोफे पर बैठे हुए हैं और सामने की टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई है। राजा साहब की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि वो इस समय कितने ज्यादा नशे में हैं। अरुणिमा हैरानी से राजा साहब को देखते रह जाती है। क्या उन्होंने अरुणिमा के सवालों से बचने के लिए इतनी सारी शराब पी रखी है और इसीलिए यहाँ आकर बैठ गए हैं ताकि अरुणिमा उन्हें ढूंढ ना सके? लेकिन अरुणिमा को आज अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। वो गुस्से में राजा साहब को देखकर कहती है, आप इस तरीके से मेरे सवालों से बच नहीं सकते हैं। मुझे आज अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। आज आपने हर किसी की एक इच्छा पूरी की है, लेकिन आप मेरे मामले में इस तरीके से मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। सच बताइए, मेरे सवालों से बचने के लिए ही आप यहाँ पर जाकर छुप कर बैठे हैं ना? आस्तिक ने अपने नशे में गुत आंखों से अरुणिमा को देखा रहा था। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हताशा थी, लेकिन वो अपने भावहीन एक्सप्रेशन के साथ अरुणिमा को देखे जा रहा था। अरुणिमा के लगभग आंसू निकल आए थे और उसने रोते और सुबकते हुए आस्तिक को देखकर कहा, बताइए राजा साहब, बताइए क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? और अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? और आप हमेशा मुझ पर किस बात को लेकर शक करते रहते हैं जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया होता है? आप हमेशा ही मुझे सजा देते हैं, वो भी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं है। बताइए राजा साहब, आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अरुणिमा ने एक सांस में ही अपने सारे सवाल पूछ लिए थे, लेकिन आस्तिक अभी भी भावहीन चेहरे के साथ अरुणिमा को देख रहा था, जैसे कि उसके कानों तक उसके सवाल तो जा रहे हैं लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पा रहा है। आस्तिक धीरे से अपने बालों को हाथों में पकड़ता है और उसे जोर से रगड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है या कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। अरुणिमा आस्तिक के सामने रो रही थी। आस्तिक ने जब उसके सुबकने की आवाज़ सुनी तो वो सोफे से खड़ा होता है और अपने भावहीन चेहरे के साथ धीरे कदमों के साथ अरुणिमा के पास आने लगता है। उसे अपने पास आता देख अरुणिमा अपने एक एक कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन अचानक से आस्तिक अरुणिमा के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके हाथों को झटका से पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। आस्तिक अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डाइवोर्स चाहती हो? आस्तिक की ये कहते ही अरुणिमा हैरानी से उसे देखने लगती है। वो आस्तिक से डाइवोर्स क्यों चाहेगी? नहीं, उसे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए था। अगर वो आस्तिक से डाइवोर्स ले लेगी तो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी माँ ने पहले ही उसे अपनाने से मना कर दिया है, और अगर वो एक तलाकशुदा बेटी के रूप में अपनी माँ के पास जाएगी तो ज़रूर उसकी माँ उसे घर से निकाल देगी और समाज में उसकी बदनामी का कारण बनेगी। अरुणिमा ने सुबकते हुए और रोते हुए आस्तिक को देखकर ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं राजा साहब, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए। आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं अरुणिमा की बात सुनकर, लेकिन उसने अपने सख्त आवाज़ में अरुणिमा से पूछा, क्यों क्यों नहीं चाहिए तुम्हें मुझसे डाइवोर्स? तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है मुझे छोड़कर जाने का, यहाँ से आज़ाद होने का। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो फिर क्यों तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं मांग रही हो? और अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरुणिमा ने शांति से कहा, मैं बस शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। अपनी माँ को ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी परवरिश पर उंगली नहीं उठाने दूंगी। मैं इस शादी को सफल बनाना चाहती हूँ। अरुणिमा ने अपनी बात आस्तिक के सामने रख दी, लेकिन आस्तिक सिर्फ अरुणिमा की आंखों में देख रहा था, जो रोने की वजह से इस वक्त लाल हो गई थी। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे होते हुए कहता है, मेरे साथ तुम कभी शांति से नहीं जी पाओगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहकर बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और मेरे अंदर किसी के लिए भी दया, प्यार या प्यार की भावना नहीं है। मुझे जब भी किसी चीज़ पर गुस्सा आएगा तो मैं वो गुस्सा तुम पर निकलेगा, भले ही अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे तुम्हें किसी भी हद तक प्रताड़ित करना पड़े। तो बताओ, क्या तुम अब भी मेरे साथ इस शादी को सफल बनाना चाहती हो? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। दो मिनट तक जब आस्तिक अरुणिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं पाता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो अरुणिमा को कंधे से पकड़ता है और लगभग उसे हिलाते हुए कहता है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ, क्या तुम अभी मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या तुम मुझे मेरी मॉन्स्टर रूप के साथ अपना सकती हो? अरुणिमा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। आस्तिक के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक शांति पसर गई। उसने अपनी नशे की हालत में बहकते हुए अरुणिमा को देखते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम उसके जैसी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम उसके जैसी कभी नहीं बन सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो जो बिना किसी मतलब के हर किसी को अपना लेती हो, भले ही सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे। हमेशा ऐसे ही रहना, उसके जैसी बनने की कोशिश मत करना। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। उसे आस्तिक का कहा एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। आस्तिक किसके बारे में बात कर रहा था? कौन है जिसके जैसा अरुणिमा को नहीं बनाना है? उसने हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी माँ की तरफ करते हुए अपने दूसरे हाथ की उंगली से अपनी माँ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अरुणिमा से कहता है, क्या तुम इस तस्वीर को देख रही हो? तुम्हें पता है ये कौन है? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक नशे की हालत में अपनी माँ के बारे में क्या बात कर रहा था। आस्तिक हताशा के साथ अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और कहता है, मेरी माँ भी तुम्हारी जैसी ही थी। वो भी बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्यार किया करती थी। इन्होंने जिंदगी की हर कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन फिर भी ये बिना किसी मतलब के सबसे प्यार किया करती थी। तुम इन्हीं की तरह हो, जो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लोगों के बारे में सोचना बंद करती हो। तुम्हें सबकी परवाह है, बस अपनी नहीं है।